जगन्नाथ जगन्नाथ
श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे आज कैंटो 10 अध्याय 6 श्लोक 39-41 पढ़ेंगे। पयांसि आसाम अपि वत् पयांसि आसाम अपि वत् पुत्रस्नेहस्तनुतानि अलम् पुत्रस्नेहस्तनुतानि अलम् भगवान् देवकी पुत्र भगवान् देवकी पुत्र कैवल्य अखिल कृत तासाम कैवल्य अखिल प्रद तासाम अब तासाम अपरितन कृष्ण तासाम अपरितन कृष्णे गुर्वतीनां सुतैक्षणम् गुर्वतीनां सुतैक्षणम् न पुनः कल्पते राजन् संसार अज्ञान संभव पयांसि आसाम् अपीव पुत्रस्नेहस्तनुतानि अलम् भगवान् देवकी पुत्र कैवल्य अखिल प्रद रासामवरितं कृष्णे गर्भतीनां सुत सुते इक्षणं नाहुना कल्पते राजन् संसार अज्ञान संभव पयांसी आसामपिब पुत्रस्नेहासनालयम् भगवान देवकी पुत्र कैवल्यादि अखिल प्रदान तासाम वीरितं कृष्णे गर्भतीनां सुते इक्षणं न पुनः कल्पते राजन् संसारो ज्ञान संभव
भगवान देवकी पुत्र
श्लोकों का शब्दार्थ ऐसे हैं, बोलिए। पयांसी दूध शरीर से निकला, यासम उन सबों को, उन सबों का अपीबत कृष्ण ने पिया, पुत्र स्नेह स्तनुतानी मातृ स्नेह के कारण, न कि बनावटी ढंग से गोपियों के शरीर से निकला दूध अलम पर्याप्त भगवान भगवान देवकी पुत्र देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। कैवल्यादि यथा मुक्ति या ब्रह्म तेज में लीन होना, अखिल प्रद ऐसे समस्त वरों के दाता, स्तासन उन सारी गोपियों का अविरतन निरंतर कृष्णे कृष्ण में कुर्वतीनां करते हुए, सुत इक्षणम माता द्वारा अपने शिशु को निहारना, न कभी नहीं पुनः फिर कल्पते कल्पना की जा सकती है। राजन हे राजा परीक्षित, संसार जन्म मृत्यु का भौतिक बंधन, अज्ञान संभव सुखी बनने की कामना करने वाले मूर्ख व्यक्तियों द्वारा अनजाने में स्वीकृति किया जाने वाला। ट्रांसलेशन एंड इनकॉर्पोरेटेड डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। भगवान कृष्ण उनके वरों के अनेक वरों के देने वाले हैं, जिनमें कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज में तदात्म्य भी सम्मिलित है। उन भगवान के लिए गोपियों ने सदैव मातृ प्रेम का अनुभव किया और कृष्ण ने पूर्ण संतोष के साथ उनका स्तनपान किया। अतएव अपने माता पुत्र के संबंध के कारण विभिन्न पारिवारिक कार्य में संलग्न रहने पर भी किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अपना शरीर त्यागने पर वो इसे भौतिक जगत में लौटाए। तात्पर्य, यहाँ कृष्ण भावनामृत के लाभ का वर्णन हुआ है। कृष्ण भावनामृत क्रमश दिव्य पद पर उत्पन्न होता है। मनुष्य परम पुरुष, परम स्वामी, परम मित्र, परम पुत्र या परम दंपति प्रेमी के रूप में कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यदि कृष्ण से किसी का इनमें से किसी रूप में दिव्य संबंध होता है तो समझिए कि उसके भौतिक जीवन का अंत हो गया है। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, चित्तादेयं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन, ऐसे भक्तों के लिए भगवद्धाम वापस जाना सुनिश्चित है। न पुनः कल्पते राजन संसार अज्ञान संभव, ये श्लोक इस बात को भी पुष्टि करता है कि जो भक्त कृष्ण से किसी विशेष संबंध में बंध कर निरंतर ध्यान करते हैं वो इस जगत में फिर नहीं लौटते। इस संसार में भी कोई संबंध है। मनुष्य सोचता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा प्रेमी है या ये मेरा मित्र है, किंतु ये संबंध क्षणिक क्षणिक माया है। अज्ञान संभव, ऐसी चेतना अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है, किंतु जब वही चेतना कृष्ण भावनामृत में जागृत होती है तो उसे पुनः आध्यात्मिक जीवन प्राप्त होता है और वो भगवद्धाम निश्चित रूप से वापस जाता है। यद्यपि गोपियाँ रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियाँ यद्यपि गोपियाँ रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियाँ थी और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्षतः कृष्ण की माताएँ न थी, किंतु उन्हें भगवद्धाम जाने का तथा कृष्ण की सांसे दासियां आदि बनने का ऐसा ही अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि रोहिणी तथा यह सब आपको मिला। संसार शब्द अपने शरीर, घर, पति या पत्नी तथा बच्चों के प्रति अनुरक्ति का द्योतक है, किंतु गोपियां तथा वृंदावन के अन्य वासी अपने पति तथा घर के प्रति ऐसा ही स्नेह तथा अनुरक्ति रखते हुए भी कृष्ण को अपने स्नेह का केंद्र बनाए हुए थे। इसीलिए अगले जन्म में उन्हें गोलक वृंदावन जाने तथा कृष्ण के साथ रहकर शाश्वत दिव्य सुख भोग की प्राप्ति निश्चित है। इस बौद्धिक जगत से छोड़कर दिव्य पदों को प्राप्त करने और भगवद्धाम जाने का सरल कर्म मार्ग भक्ति विनोद ठाकुर ने सुझाया है। कृष्ण ने संसार कर छड़ी अनाचार सारे पाप कर्म को त्याग कर कृष्ण के परिवार में रहना चाहिए, तभी मुक्ति निश्चित है। ओम ज्ञानति निरंदस्य ज्ञानांजन सलोकया चक्षुरु निमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवीष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं सग्रजातं सगण रघुनाथमितं तं सजीवं सालयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिताशिविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तत्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कंसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो भागवत की जो प्रसंग चर्चा चल रही है पुतना का बद्ध, तो ये पुतना कोई सामान्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला में एक पात्र है, वो घृणित नहीं है, वो निंदा की योग्य नहीं है। जो भी कृष्ण की लीला के पात्र बनते हैं उनको हमें नीच दृष्टि से देख ही नहीं सकते। तो निश्चित रूप से कृष्ण न पुतना बड़े ही उच्च कोटि के कोई जीवात्मा है, इसीलिए तो लीला में शामिल होने का अवसर उनको भगवान ने दिए। और जो भगवान की लीला में स्थान पाते हैं वो सामान्य जन नहीं है। तो आज के प्रसंग में श्रील सुखदेव गोस्वामी भी यही बात को थोड़ा सा हमें याद कराना चाहते हैं कि हर जीव के साथ जो भगवान के संबंध है, ये संबंध अनुरूप भाव से होना चाहिए, पुतना जैसे विपरीत भाव से नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल भाव में नहीं होना चाहिए। यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी हमें याद करा करके ये बताना चाहते हैं कि हर जीव का कृष्ण के साथ एक संबंध है, हर जीव का कृष्ण के साथ ये संबंध है। ये संबंध को आज प्रत्येक जीव भूल चुका है। ये संसार के साथ जो संबंध बांधा ये उनका बहुत बड़ी भूल है। ये संसार के साथ जो संबंध है ये भुला दिया भगवान के साथ हमारा जो एक संबंध को संबंध है करके। तो प्रत्येक जीव का भगवान के साथ एक संबंध है, ये बात को भगवान स्वयं भगवद गीता में भी बताते हैं कि ममैव अंश जीव। ये जीव क्या है? मेरा अंश है। ये संसार में प्रत्येक जीव, कुत्ते बिल्ली से लेकर पेड़ पौधे से लेकर हर जीव, भगवान कहते हैं ये मेरे है, ये हर जीव मेरे अंश है। लेकिन जब जीव भौतिक शक्ति के अंतर्गत होता है तो कृष्ण के संरक्षण में रहना
रहने के लिए पसंद नहीं करता, ये बद्ध जीव का दोष है। लेकिन जब मुक्त जीव भगवान के साथ अपने संबंध को बना लेता है, मुक्त जीव का भगवान के साथ जब संबंध हो जाता है, तो स्वतः भगवान के संरक्षण में रहना पसंद करता है, वो भगवान के संरक्षण में रहता है। और जब एक जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, जब एक जीव का भगवान के साथ संबंध हो जाता है, तो ये भौतिक संसार के कोई प्रकार आकर्षण में विचलित नहीं होता है। ऐसे भगवान संबंधित जीव ये भौतिक संसार के जो दुख सुख हानि लाभ और अनेक कई प्रकार की जो विचलित करने की जो प्रहसन है, जो बनावट है, ये भौतिक जगत की जो बनावट है, वो भगवत संबंध को भुला देना। लेकिन जैसे एक जीव भगवत संबंधित हो जाता है, तो वो भौतिक संसार की कोई प्रकार की प्रहसन उनको विचलित नहीं कर पाता है। और भगवत संबंधित जीव, भगवत संबंधित जो व्यक्ति है, वो चाहे अपने जीव प्राण को बाजी लगा देता है, लेकिन भगवान के साथ जो संबंध है, वो संबंध के साथ कोई प्रकार खतरा आने नहीं देता, क्यों इतने दृढ़ बन जाता है। अब भगवान के साथ हर जीव का जो ये संबंध इतने आकर्षणीय है, स्वतः जीव भगवान के संरक्षण में रहना पसंद करेगा। जैसे एक पतिव्रता स्त्री है, ठीक उसी प्रकार जैसे जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है, वो तुरंत तत्क्षणात ये संसार को छोड़ देता है। और ये संबंध इतने शक्तिशाली है, अनेक अनेक जन्म का जो पाप है, पाप ताप संताप, जीव के भीतर जो छुपी हुई कर्म वासना है, अनेक अनेक जो कर्म वासना जीव के भीतर पड़ा हुआ है, वो तत्क्षण तुरंत जल करके भस्म हो जाता है। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, तुरंत जब जीव ये अनर्थों से मुक्त हो जाता है, अपने भीतर से अनर्थ जीव जब अनर्थ से निवृत्ति हो जाता है, और जीव जब अपने को शुद्ध अवस्था में पाता है और अपने स्थिति को जब वो समझता है, तो फिर उस स्थिति के अनुसार वो भगवान के साथ बर्ताव करता है, अपने संबंध के अनुसार वो कार्य करने लगता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है और अपने स्वरूप में अपने स्थिति में पहुंचता है, तो फिर जब ये भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाता है, तो फिर वो भगवान के साथ एक नाता जोड़ता है, भगवान के साथ एक नाता बांधता है। हाँ, फिर वो प्रार्थना करता है, अहिनंदन तनुज किंकरं पतितो मां विषमे भवाम्बुद, हे नंद महाराज के पुत्र, मैं तो ये भौतिक संसार में आके दुखी हो गया, तो कृपया क्या है, तब पाद पंकज स्थित धूलि, मैं भौतिक संसार में आके दुखी हो गया, ये भव समुद्र में मैं गिर पड़ा, तो कृपा करके मुझे आप उद्धव के जैसे, उद्धव जब वृंदावन में पहुंचा, गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति जो अनुरक्ति है, भगवान कृष्ण के प्रति जो उनके हृदय में भक्ति का भाव को उद्धव जी ने देखे, और भगवान ज्ञान उद्धव ने ज्ञान के सहारा लेकर के, ज्ञान का गरिमा को लेकर के गोपियों को सांत्वना देने के लिए ब्रज में पहुंचे थे, लेकिन ब्रज में पहुंच करके जब उद्धव जी ने देखे ये ज्ञान ध्यान योग तपस्या और ये सारे से गोपी लोग ऊपर है, तो फिर तो वही उद्धव गोपियों के चरण कमल की धूल बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण को स्तुति किए। तो ठीक उसी प्रकार चैतन्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के जितने भक्त है, तो चैतन्य महाप्रभु के आधारा में आकर के तो वो श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि मैं भौतिक संसार में गिर पड़ा हूँ, तो कृपा करके मुझे आप उठाइए और आपके चरण कमल के धूल बना लीजिए। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानाम अभयंकर, ओ कृष्ण आप भक्तों को अभय देने वाले हो, और ये संसार में आके मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में आग में झुलस रहा हूँ, अपवर्ग अहर्षि, आप ही अपवर्ग मतलब आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मुझे मुक्ति दिला सकते। कब इस प्रकार का स्तुति करता है? जब मुक्त होता है, जब मुक्त, जब जीव मुक्त होता है, संबंध स्थापित करता है भगवान को, तो वो उसका जो स्तुति है बड़े शक्तिशाली होता है, भगवान के चरण को छूता है। और ऐसे स्तुति जब मुक्त जीवों का स्तुति को बद्ध जीव दोहराता है, और बद्ध जीवों का बद्धता को भी खंडन करने के लिए सक्षम होता है। इसलिए जो प्रामाणिक भक्त हैं, ये संसार में जो प्रामाणिक भक्त हैं, वो प्रामाणिक भक्त जो भगवान को स्तुति करते हैं, वो स्तुति को जब हम गाते हैं, हमारे भी ये भौतिक संसार का बंधन खंडता है, ये भौतिक संसार के जो आकर्षण टूटता है। हमारा मनमानी से हमें कुछ स्तुति भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं, क्यों? हम अपूर्ण है, हम बद्ध है, हमारे कर्म, हमारा मन, हमारे हृदय में अनेक अनेक वासनाएं हैं, भौतिक वासनाएं हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें भगवान को स्तुति अर्पण कर ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग भौतिक संसार से परे हैं, मुक्त हैं, भगवत संबंधित है, ऐसे संबंधित जीवों का स्तुति को केवल मात्र दोहराने से हमें भौतिक संसार को लांग सकते हैं। इसलिए प्रामाणिक भक्तों की स्तुति को हमें गाना चाहिए। हाँ, तो इसी प्रकार, हाँ, तो जीव कब स्तुति करता है ना, भगवान के साथ संबंध जो बांधता है, भगवान के साथ संबंध जो बनाता है। जैसे ही जीव का भगवान का साथ संबंध बना देता है, तो तुरंत सारे प्रकार के दुख सुख संकट से वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार का श्रील सुखदेव गोस्वामी, हाँ, ये आज के, ये एक तो है, दो चीजें आज के प्रसंग के द्वारा श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। एक है कृष्ण भावना मृत, और दूसरा है संबंध, भगवान के साथ जो संबंध है। लेकिन ये दोनों बगल बगल में है, क्योंकि कृष्ण भावना मृत और संबंध ये कोई अलग अलग चीज नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में आता है, वो अपने रिश्ता को जान लेता है। कृष्ण भावना मृत मतलब क्या है? अपने संपर्कों को, भगवान के साथ जो संपर्कों को जानना। हाँ, यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी, हाँ, तो बताते हैं कि इस प्रकार हर जीव ये भौतिक संसार में आकर के भगवान के साथ जो संपर्क है भूल चुका है, हाँ, तो अपने उपदेश के द्वारा, ये प्रसंग के द्वारा वो याद कराना चाहते हैं। हाँ, तो यही बात को आगे जा करके बताना चाहते हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी कि प्रत्येक जीव जो ये भौतिक संसार के भीतर है, तो उसको कैसे, ये भौतिक संसार से हम कैसे ऊपर लें, उसका उपाय एक शुद्ध भक्त के अनुगामी होना, महाजनस्य गतस्य पंथा। जब महाजनों के चरण कमल के अनुसरण करेंगे, उनके बताए हुआ मार्ग के, मार्ग में हमें चलेंगे, तभी जाके हमें इस संसार से हमें मुक्त हो सकते हैं। तो आगे जाकर के ये बात को और शक्तिशाली रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण अनेक वरों को देने वाले हैं, जिनमें कैवल्य अथवा ब्रह्म तेज में तादात्म्य भी सम्मिलित है। हाँ, जैसे भगवान को हमें जान लेते हैं, तो वो ब्रह्म तेज को लीन, जो भगवान को अनेक अनेक योगी लोग अनेक तपस्या करते हैं, ये ब्रह्म में लीन होने के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जैसे हमें हमारे ये संबंध को जान लेते हैं, वो ब्रह्म तेज क्या भगवत धाम को वो प्राप्त करता है। इस प्रकार के श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं। और दूसरा बात बताते हैं, कृष्ण भावनामृत क्रमश दिव्य पद पर उन्नति करता है। जैसे एक जीव कृष्ण भावनामृत में आता है, धीरे धीरे उनका जो स्थिति है वो दिव्य पद पर आ जाता है। मनुष्य किसी भी एक रिश्ता में भगवान का भक्ति करना चाहिए। ऐसे तो अनेक अनेक भाव है भगवान के साथ, रिश्ता है, लेकिन मुख्य रूप में पांच जो भाव है वो मुख्य रूप में कहा गया। एक भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये किसी भी एक को लेकर के भगवान का भक्ति जब हम करते हैं, तो भक्ति मार्ग में हमें पूर्ण बनते हैं और हमें लक्ष्य में पहुंचते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये संबंध में हमें भक्ति करना चाहिए। इस प्रकार का श्रील सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं। और एक यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि जैसे हमें भगवान के साथ संबंध जुड़ लेते हैं कि फिर ये भौतिक संसार में हमें नहीं लौटते, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। जैसे हम भगवान के कार्यकलाप को जान लेते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यं जो व्यति तत्त्वतः, जैसे एक व्यक्ति जान लेता है कि भगवान के जन्म और कर्म ये दिव्य है, ये शरीर को छोड़ने के बाद फिर ये भौतिक संसार में उन्हें आना नहीं पड़ता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी ये बात को बताते हैं। भगवद्धाम वापस जाना सुनिश्चित है, ऐसे है जैसे वे एक व्यक्ति जान लेता है तो उनके लिए भगवद्धाम जाना सुनिश्चित है। पुनः कल्पत राजन संसार अज्ञान संभव। ये संसार अज्ञान में भरा हुआ है, लेकिन जैसे हमें भक्ति के स्तर पे आते हैं तो फिर हमें ये अज्ञान को नाश करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। और इस बात पर प्रभुपाद जी ने बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत पुनः वापस जाना होता है। गोपियाँ यद्यपि गोपियाँ रोहिणी तथा माता यशोदा की सखियाँ थी और कृष्ण को अपना स्तनपान कराती थी, परंतु प्रत्यक्षत कृष्ण की माताएं न थी। भले ये गोपी लोग यशोदा या रोहिणी की जैसे उनका माँ नहीं थी, लेकिन ये उनके जो भाव माँ की रखी थी, इसीलिए भगवान ने यशोदा और रोहिणी को जिस प्रकार भाव दी प्रदान की, तो ये गोपियाँ को भी उसी प्रकार के भाव को भगवान ने प्रदान किया। तो इसी प्रकार भगवान के साथ हमें संबंध बना करके जब हम भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हमारा लक्ष्य में पहुंचते हैं। और यह प्रसंग में और एक महत्वपूर्ण बात भगवान बताते हैं कि हमें जो ये संसार में है, भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा बताते हैं कि कृष्ण संसार कर छाड़ी अनाचार। जब हमें कृष्ण के संसार में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होने के लिए अलग कोई उपाय, अलग कोई करना जरूरत नहीं होता है। जैसे हमें कृष्ण भक्ति करते हैं या कृष्ण के संसार में आते हैं तो तुरंत सारे प्रकार का अनाचार से हमें मुक्त हो जाते हैं। ये बात को भी भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी यही बात को बताते हैं। वो कर्मी हो या ज्ञानी हो या ध्यानी हो, भगवान बताते हैं कि वो मेरे शरण में आए, और जैसे वो गंभीरता के साथ मेरा भक्ति को अपनाता है, उनका गंभीरता के अनुसार मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ। जे यथामान प्रपद्यन्ते, जे जैसे मेरा भक्ति करता है मैं उसको उनके भक्ति के अनुसार पुरस्कार प्रदान करता हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी और एक बात यहाँ पर बताते हैं, हमें कुछ भी ये संसार में कर्म करना है कैसे ना, भगवान कृष्ण के लिए। यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र लोक एवं कर्म बंधन, यदि हमें कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो हमें हमारे कर्म के द्वारा जन्म मृत्यु में फंसे जाएंगे। जिस प्रकार एक रेशम कीड़ा अपने मुंह से लार निकालती है और ये लाल से वो धागा बुनती है, और ये धागा से एक जाल बनाती है और जाल में गिर करके मर जाता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के द्वारा वो मारे जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये संसार में प्रकट होते हैं कर्म की ऐसे शिक्षा देने के लिए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, हमें ऐसे कर्म करें जैसे कि हमें भौतिक जगत में न फंसे। हमारे असली समस्या जो है, हम भौतिकता कार्यकलाप में फंसे हुए हैं और बद्ध जीवन में हमें संघर्ष कर रहे हैं, और दंड के रूप में प्रकृति के द्वारा हमें दंड के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। तो यहाँ पर हमें भगवान श्री कृष्ण के आदेश को पालन करना चाहिए, जिसे हमें फिर दोबारा पश्चाताप करना नहीं पड़े। तो इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को तभी हमें पालन कर सकते हैं जब हमें उनके भक्त बनते हैं। मनमना भव मद भक्त, भगवान भी यही बात बताते हैं कि मेरे भक्त बन जाओ। जैसे ही मेरा भक्त बन जाओगे, हाँ मेरा पूजा करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो फिर यही ही भक्ति पद तक उठने की मान्य सिद्धांत है। प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति पद तक उठने का यही ही सिद्धांत है। हाँ, भगवान का भक्त बन जाना, भगवान का पूजा करना, भगवान का नाम चिंतन, भगवान का स्मरण करना और उनका कीर्तन करना, ये भौतिक जगत में प्रत्येक जीव संघर्षरत संघर्ष में है। जीवन संघर्ष में हर जीव लगा हुआ है और ये भौतिक जगत की जो संकट से अपने को बचाना चाहता है, जहां तक उसका बुद्धि काम करता है तो ये भौतिक जगत से अपने को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करता है। लेकिन जब तक हमारा सुरक्षा के साथ भगवान कृपा मिलता नहीं है तब तक हमें सुरक्षित नहीं हो पाते। हाँ, तो इसीलिए आप लोग पीछे हमें पढ़ के आए हैं तो गजेंद्र जब संकट में आ गया था और वो संकट के घड़ी में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल का शरण ग्रहण करने के लिए चुना, भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल का आश्रय है इस प्रकार का चुना। हाँ, पर्याप्त विचार करने के बाद गजेंद्र ने यह निर्णय लिया कि भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। और ऐसा निर्णय कोई पापी व्यक्ति नहीं ले सकता। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं जब कोई व्यक्ति पवित्र होता है और सुकृतिवान होता है, ऐसे निर्णय ले पाता है कि हर विषम परिस्थिति में, हर संकट परिस्थिति में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल को ग्रहण करना चाहिए। और यह भी बात बताया जाता है ये संसार विपद में भरा हुआ है, पदम पदम विपदम, लेकिन मूर्ख झूठे ही सोचते हैं ये भौतिक संसार सुख की स्थान है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का ये भौतिक संसार को सुख की स्थान सोचता है तो ये हमें समझना चाहिए वो मोहग्रस्त है। हाँ, और ये संसार को सुख समझना हमें अज्ञान में है, इस प्रकार का हमें समझना चाहिए। तो आज के ये उपदेश के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी एक बात ये बताते हैं कि हमें भगवान के साथ में जो संबंध है ये संबंध को जानना, किसी भी प्रकार जैसे हमें संबंध को जान लेते हैं तो हमारा जो बार बार जन्म मरण का जो चक्र है चल रही है वो रुक जाती है और भौतिक संसार आना फिर बंद हो जाती है। तो एक बार ये बात के ऊपर एक छोटी सी घटना याद आता है। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को राज दिए और राज दे करके हस्तिनापुर द्वारका चल जा रहे थे और जाने के पहले तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को एक यज्ञ करने के लिए आदेश दिया। ऐसे वो मन में निर्णय लिए थे युधिष्ठिर महाराज और उसके साथ साथ स्वीकृति दिए, भगवान श्री कृष्ण स्वीकृति भी दिए कि हाँ आप ही ऐसे एक योग्य व्यक्ति हो, राजस्व यज्ञ कर सकते हो। और युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेकर और पितामह भीष्म अपनी ताव धृतराष्ट्र ये सारे का सलाह लेकर ये अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आगे चले। और अश्वमेध यज्ञ करने के पहले अपने सारे भाइयों को अनेक अनेक दिशा में वो भेजे। और पांडव जो अर्जुन भीम नकुल सहदेव तो अलग अलग दिशा में गए और भीमसेन जब बंगाल देश में पहुँचे और बंगाल देश में जब नवद्वीप परिक्रमा करते हैं वो नवद्वीप परिक्रमा के मार्ग में एक जगह आता है वो है समुद्रगढ़। इस समुद्रगढ़ में जब जाके भीमसेन पहुँचे और वहाँ के राजा थे सूरसेन नसरी समुद्रसेन, समुद्रगढ़ के राजा थे समुद्रसेन। तो समुद्रसेन को जब पता चला कि भीमसेन यहाँ पर आए हैं और मेरे साथ युद्ध करने के लिए, तो तुरंत उन्होंने विचार लिए कि मैं भीमसेन को कोई प्रकार कर नहीं दूंगा, क्या उनका अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। वह समय पांडव लोग घूम घूम के वो एक प्रकार आह्वान दे रहे थे कि हर व्यक्ति आए हमारे साथ युद्ध करें और यदि युद्ध नहीं करेगा हमारा अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो कर देने के लिए कर दे। अश्वमेध राज सॉरी अश्वमेध यज्ञ नहीं राजस्व यज्ञ, वो राजस्व यज्ञ के लिए वो कर दे। इस प्रकार पांडवों का उद्देश्य था। तो समुद्र सेन को जब पता चला इस प्रकार का बात, तो वो कर नहीं देने के लिए और पांडवों का अधीनता स्वीकार नहीं करने के लिए उन्होंने विचार लिया। और भीमसेन को जब पता चला ये कर नहीं कर देने के लिए या हमारा नियंत्रण में आने के लिए इनकार कर रहा है, वो तुरंत समुद्र सेन के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। और ये जो समुद्र सेन भी था वो भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। और समुद्र सेन ये विचार लेकर के भीमसेन के साथ युद्ध किया कि भीमसेन पांडव जो है भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं, अब प्रिय भक्तों के ऊपर जब विपत्ति आता है तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों को रक्षा करने के लिए उनके पास होते हैं कि यहाँ आके पहुँचते हैं। तो मैं भीमसेन को कर नहीं दूंगा और उनका विरुद्ध में युद्ध करूंगा, और यदि मैं युद्ध के द्वारा भीमसेन को परास्त कर दूंगा तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो सकते हैं। भीमसेन जब मेरे द्वारा हार जाएगा तो भीमसेन के पुकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आ सकते हैं। इस प्रकार का विचार लेकर के समुद्र सेन भगवान को स्मरण करते हुए जब समुद्र सेन इस प्रकार का विचार लेते हुए जब भीमसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया और बड़े तीव्रता के साथ बड़े भयंकर युद्ध किया भीमसेन के साथ, और समुद्र सेन का आक्रमण से भीमसेन परास्त हुए। और जब परास्त हुए परास्त पूर्ण मात्रा से पूरा नहीं हुए थे, लेकिन एक प्रकार परास्त हो ही जाने वाले थे। तो जब परास्त होने वाले थे ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण को स्तुति किए, ते पांडवों की स्वामी आप यहाँ पर आकर के मुझे आप रक्षा दीजिए। जब इस प्रकार भीमसेन स्तुति किए तो वहाँ पर भगवान प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए केवल और समुद्र सेन भी ये मन में विचार रखे थे, उनका इच्छा नहीं था कि भीमसेन को परास्त करना, कि पांडवों को कर नहीं देना, उनका मन में ये इस प्रकार का विचार नहीं था। लेकिन समुद्र सेन समुद्रगढ़ में नवद्वीप धाम में रह बास कर रहे थे और वो नवद्वीप धाम छोड़ नहीं पा रहे थे। नवद्वीप धाम छोड़ करके और बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उनके मन के भीतर एक प्रकार का इच्छा हुआ। और इच्छा तो हुआ भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने का, और ऊपर से वो नवद्वीप धाम छोड़ नहीं रहे थे। तो इस स्थिति में वो भीमसेन को इस प्रकार का विचार रख करके वो भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। मैं भीमसेन को युद्ध में हरा दूंगा, निश्चित रूप से कृष्ण पांडवों को विजय दिलाने के लिए पांडवों को रक्षा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। इस प्रकार विचार रखते हुए जब समुद्र सेन युद्ध किए तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए। आज भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित हुए, भगवान श्री कृष्ण का उपस्थिति को केवल समुद्र सेन ही दर्शन कर पा रहा। भले युद्ध क्षेत्र में अनेक उपस्थित थे, भीमसेन भी दर्शन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर श्री कृष्ण उपस्थित होकर के उनका बल बढ़ाने के लिए आ गए थे, ये बात को भी भीमसेन जान नहीं पा रहे थे। तो केवल समुद्र सेन ही वो बात को दर्शन कर पा रहे थे, देख पा रहे थे भगवान श्री कृष्ण को, केवल देख पा रहे थे। आज जब समुद्र सेन भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके स्तुति किए, वो समय जब समुद्र सेन भगवान श्री कृष्ण को दर्शन किए वो राधा रानी के साथ दर्शन किए, फिर दूसरे मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के बच्चे बन जाते हैं। दोपहर के समय अपने मित्रों के साथ कुमुद वन में जिस प्रकार दोपहर के छिना छपटा होकर के डिनर करते हैं, तो इस प्रकार का वो दृश्य को भी समुद्र सेन देखें। फिर भगवान श्री कृष्ण का इस प्रकार लीला को देखने बाद समुद्र सेन स्तुति करते हैं कि कृपया आपका गौरांग रूप का मुझे दर्शन कराइए। जैसे समुद्र सेन भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार का प्रार्थना किए कि आपका गौरांग रूप का दर्शन कराइए, तो तुरंत वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने बांसुरी छोड़ देते हैं, अपने बाल है, घुंघराले बाल है, वो बाल कहाँ चला जाता है, और उनका जो पीताम्बर है वो कहाँ चला जाता है, तो सब निकल जाती है, बांसुरी भी कहाँ गायब हो जाता है, तो वहाँ पर समुद्र सेन भगवान श्री कृष्ण का गौरांग रूप का दर्शन करते हैं। और जैसे ही समुद्र सेन भगवान का गौरांग का रूप को दर्शन करते हैं, तुरंत वो भाव में आकर के रोने लगते हैं। तो थोड़े ही समय में भगवान का जो ये गौरांग रूप है वो समुद्र सेन का, समुद्र सेन के आगे सामने से अदृश्य हो जाता है। और जैसे अदृश्य हो जाता है तो गौरांग के विरह में, चैतन्य महाप्रभु के विरह में समुद्र सेन रोने लगते हैं। जब रोते हैं तो भीमसेन को पता लगता है कि वो हमारे द्वारा हार जाने की भय से वो रो रहे हैं। तो इस प्रकार सोच करके भीमसेन अपने बल बढ़ाते हैं। और जब समुद्र सेन देखते हैं कि भीमसेन मुझे परास्त करने के लिए प्रयास कर रहा, तैयारी कर रहा है, तो स्वतः जाके भीमसेन के पास झुक जाते हैं और कर देने के लिए राजी हो जाता है। तो कहने की यह अर्थ है, भक्ति ऐसे एक आकर्षण चीज है जो भक्ति के द्वारा हमें भगवान को जाने सकते हैं। यही बात भी भगवान गीता में भी बताते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, जो मेरे भक्त होते हैं वही मुझे जान सकता है। तो आज के ये प्रसंग के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी यही बात को हमें भी बताना चाहते हैं, प्रत्येक जीव कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करना चाहिए। ये कृष्ण भावना अमृत का जो अभ्यास है बहुत बड़े बड़े खतरा से, बहुत बड़े बड़े संकट से हमको बचा सकता है। यही बात गजेंद्र का जब स्मरण हो आया, मृत्यु के सामने पहुंचा था, तो अचानक गजेंद्र को ये पूर्व जन्म का जो कृष्ण भावना अमृत का जो अभ्यास किया था, यही कृष्ण भावना अमृत का जो अभ्यास वो स्मरण हो आया। जैसे स्मरण हो आया तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के शरण में चला गया। फिर मृत्यु जैसे विपत्ति से गजेंद्र का उद्धार हुआ। तो ये बातों से ये हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, यदि कोई मृत्यु रूपी विपत्ति से बचना चाहता है तो कृष्ण भावनामृत अभ्यास करना चाहिए। ऐसे तो भक्त मृत्यु से बचने के लिए कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करता है। भक्त मृत्यु के दरवाजे में खड़े हो या न हो, या कहीं पर किसी भी स्थिति में हो, तो एक ही चीज के लिए वो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है, मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, मेरे भक्ति के अभ्यास के द्वारा मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, इसके लिए हमारा सृष्टि है। मेरे सेवा के द्वारा, मेरे कार्यकलाप के द्वारा मैं कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करूं, ये एक भक्तों का इच्छा रहता है। मृत्यु से बचना, तो ऐसे भक्त तो ऐसे ही मृत्यु से बच जाता है। एक भक्त तो मृत्यु को ऐसे ऐसे लांग जाता है। मृत्यु से बचने के, मृत्यु को पार करना, ये भक्त के लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमारे सामने एक चैलेंज है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती देने की बात है, ये भौतिक संसार में रहते हुए कैसे हमें हमारे कार्यकलाप के द्वारा, हमारे भक्ति के आचरण के द्वारा, हमारा भक्ति के कार्य के द्वारा भगवान को प्रसन्नता प्रदान करें, ये बात को एक मुक्त जीव भागवत के द्वारा हमें शिक्षा देते हैं। जब ये भागवत को हमें श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमें एक बल प्राप्त होगा भगवान को प्रसन्न करने के लिए। क्यों ना, ये भागवत एक मुक्त जीव के द्वारा गाया गया है। भागवत एक मुक्त जीव, श्रील सुखदेव गोस्वामी एक मुक्त जीव थे, और मुक्त जीवों के द्वारा जब भागवत को श्रवण करते हैं तो और कम समय के भीतर हमारे भीतर जो सुप्त कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना है, वो विकसित होता है। और प्रत्येक बद्ध जीव को यह निर्णय लेना है जैसे कैसे ये जीवन में कृष्ण चेतना को मृत्यु के पहले विकसित कर ले। और श्रील सुखदेव गोस्वामी भी ये बात के ऊपर बल देते हैं, मृत्यु आने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले, मृत्यु आने के पहले, बुढ़ापा आने के पहले, शरीर रोगग्रस्त होने के पहले कृष्ण भावनामृत को जगाया जाए, कृष्ण भावनामृत को ऐसे स्थिति में मन में बिठाया जाए अंत समय में भी भीष्म पितामह का भाव, भीष्म पितामह का चरण कमल का अनुसरण करते हुए जीवन को छुड़ाया जाए। श्रील प्रभुपाद जी हर किसकन के भक्त को, हर भक्त को यही दिग्दर्शन देना चाहते हैं, मृत्युवरण करना है कैसे, ना पितामह भीष्म के जैसे। तो ये भावना को हमें उद्रेक कर लिए तो फिर हमारा कृष्ण भावनामृत का जो अभ्यास है वो पूर्णता प्राप्त किया है, ऐसे हमें समझेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन? यस। कौन सा प्रश्न? हाँ, समुद्र सेन का जो प्रसंग है। अच्छा, महाभारत में ऐसे प्रसंग। हाँ, ये समुद्र सेन का प्रसंग जो है नवदीप धाम में हुआ था। ये समुद्र सेन जो ये समुद्रगढ़ में एक राजा थे, वो राजा भगवान श्री कृष्ण के पहले से बहुत बड़े भक्त थे। धाम में है मतलब, और फिर समुद्रगढ़ में है मतलब, और ये बहुत बड़े भक्त थे। ये भक्तों का पहले से जन्म से उनका भीतर एक इच्छा था, मैं भगवान श्री कृष्ण को, और उनके मन में ये विचार था, मैं कभी ये धाम को छोड़ करके बाहर न जाऊं। हाँ, और उनके मन में ये भी भाव था, मैं कैसे मेरे भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे बुलाऊं। तो ये समुद्र सेन महाभारत के साथ कोई जुड़ा हुआ कोई संबंध है, मुझे पता नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम स्वामी महाराज अपने प्रवचन देते समय इस प्रकार का एक, जयपतगा स्वामी महाराज जब नवदीप धाम परिक्रमा होती है तो ये परिक्रमा के मार्ग में, परिक्रमा के ऐसे जगह पे वो इस प्रकार का हमें बताते हैं, तो वहाँ पर हमें सुने थे, बाकी आगे वो कुछ हमें बताए नहीं थे। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गो प्रेमानंद। हाँ, गो। हाँ,
क्या हो गया?